दूसरा इतिहास अध्याय 28। अब हम देश के नष्ट होने से पहले उसकी हालात बिगड़ने की अंतिम स्थिति में जा रहे हैं। आहाज उस समय राजा है। अध्याय 28 पद 1। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था। वो बहुत ही अधिक दुष्ट मनुष्य था और वास्तव में उसी के राज्य काल में राज्य आत्मिक तौर पर इतना गिर गया जितना पहले कभी नहीं गिरा था, और यहां से वो गिरता ही गया। परंतु कुछ राजा अच्छा समय भी लाए थे। आहाज का पुत्र हिजकिया एक अच्छा राजा था। हिजकिया का पुत्र मनश्शे एक दुष्ट राजा था, परंतु उसका पुत्र योशिया भी एक बहुत अच्छा राजा था। जब भी आप किसी दुष्ट राजा के विषय पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे दुष्ट वही राजा था। आहाज राजा ने जो कुछ किया वो था, अध्याय 28 पद 2, वो इसराइल के राजाओं की सी चाल चला। उसने बाल देवता की उपासना आरंभ की और ऐसा करने में उसने अपने बच्चों को आग में चलाया। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि इसराइल के संतान जब इस देश में आए तब परमेश्वर ने कनानियों को पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा क्यों दी थी। इससे कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती है। कैसे एक प्रेमी परमेश्वर पूरी जाति को पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा दे सकता है? परंतु यदि आप उनकी उपासना की विधि और उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे तब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने क्यों उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा दी थी। वे परमेश्वर की उपासना, विश्वास और आराधना में इतना अधिक भ्रष्ट हो गए थे कि उनका नाश कभी भी हो सकता था। बाल की उपासना में एक तरीका ये था कि वे अपने बच्चों को आग में चलाया करते थे। वे लोग लोहे या पत्थर की बाल की प्रतिमा को तब तक गर्म करते जब तक वो तपकर लाल न हो जाए, और जब बाल की प्रतिमा जिसके हाथ आगे को फैले रहते थे और अंगुलियां ऊपर को मुड़ी रहती थी कि बच्चों को संभाल सके लाल हो जाती थी, तब वे अपने शिशुओं को उसके लाल गर्म हाथों में रख देते थे और इस प्रकार वे बाल को बलि चढ़ाते थे। आहाज राजा अपनी संतान को आग में चलाने का दोषी था। उसने सच्चे और जीवित परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजकों की सब रीतियां अपनी धार्मिक रीतियों में शामिल की। देश में पहले से चलने वाले अशुद्ध धार्मिक रीतियों को अपनाया। यही कारण था कि परमेश्वर ने कनानियों को देश से पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा दी, क्योंकि इनके प्रभाव में उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की और असफल रहे, इसलिए इन देशों को पूर्णतः नष्ट करने को कहा गया था। समय के साथ इन देशों की रीतियां प्रभु के लोगों के जीवन का भाग बन गई और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट कर दिया। फलस्वरूप परमेश्वर के लोग उससे दूर हो गए। परमेश्वर इसी जहर से, इसी विनाश से उन्हें बचाने की इच्छा रखता था। वो चाहता था कि वे इस देश में बने रहे और उसकी सेवा करें। ये परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का फल था कि उनका विनाश हुआ। उन्होंने अपने चारों ओर की विधियों को अपनाना आरंभ कर दिया था। इस समय हम इतिहास का वो विशेष काल देख रहे हैं जब आहाज राजा था और उसके बाद हिजकिया का राज्य आया। आहाज ने केवल 16 वर्ष राज्य किया। हिजकिया के समय में यशया नबी था। यशया की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि उसने भविष्यद् वक्ताओं, तारों को देखने वालों और शगुन अपशगुनियों के विरुद्ध कहा है। उसने उनके विरुद्ध भी कहा जो व्यर्थ की झूठी आराधना करते थे। हिजकिया के बाद जब हम मनुष्य के समय में जाते हैं तब हम देखते हैं कि इसी मनुष्य ने यशया को दो भागों में काट डाला था। वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर ने यशया के समय में एक और नबी को उठाया, यरमिया नबी, जिसने इतिहास के इस समय में लोगों से बात की। उसने कहा, क्या इससे पहले ऐसी बात कभी हुई है कि लोग अपने परमेश्वर को त्याग कर उनके पीछे जाएं जो ईश्वर नहीं है? दूसरे शब्दों में, जो झूठे ईश्वरों की उपासना करते हैं वे तो अपने ईश्वरों को नहीं त्यागते, वे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झूठे देवताओं की उपासना करते रहते हैं। वास्तव में इसका कारण है कि झूठे देवताओं की उपासना में शरीर की लालसा रहती है, इसलिए इसमें आत्मिक युद्ध नहीं है। सच्चे और जिंदा परमेश्वर की आराधना करने में संघर्ष होता है। जैसे ही मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, प्रभु की सेवा शुरू करता हूं, मेरे अंदर एक संघर्ष आरंभ होता है, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और इनमें युद्ध आरंभ होता है। परंतु झूठे देवताओं की आराधना शरीर के अनुसार है, इसलिए कोई संघर्ष नहीं होता। इसलिए जो लोग झूठे देवताओं की उपासना करते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी तक उपासना जारी रखते हैं। यरमिया कहता है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि लोग अपने परमेश्वर को त्याग दे जो वास्तव में ईश्वर नहीं है? वे सच्चे ईश्वर नहीं हैं, परंतु लोग उन्हें त्यागते नहीं, वे उनके प्रति स्वामी भक्त होते हैं। तो भी परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे फिर गए, तुमने मुझ जीवन जल के सोते को त्याग दिया है। जीवन का जल बहता झरना है, तुमने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है। तुमने अपने लिए खोद कर तरश कर हौज बना लिए। उन्होंने चूने के पत्रों में खोद कर हौज बनाए थे ताकि वे अपने लिए जल जमा करें। वे सर्दी में पानी जमा करते थे जो गर्मी तक चलता था, परंतु आप जानते हैं कि इस तरह हौज में जमा किया गया पानी कैसा होता है, वे शीघ्र ही सड़ने लगता है। हौज केवल निष्क्रिय पानी ही जमा कर सकता है। परंतु तुमने मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर कहता है, तुमने अपने हौज के कारण मुझ जीवन जल के सोते को त्याग दिया है। तुमने ऐसी धार्मिक रीति अपनाई है, परंतु उसने उनके हौज के बारे में कहा, वे पानी जमा नहीं कर सकते। वे हौज बनाए करते थे, परंतु समय समय पर उसमें दरार पड़ जाती थी और उसे फिर से पूरी तरह बनाना पड़ता था। वर्षा के लिए प्रार्थना करनी पड़ती और फिर उसे नया रूप देते रहना पड़ता था। उन्हें बार बार नालियां बनानी पड़ती थी जिससे वर्षा का पानी उस हौज के सुराख द्वारा जो हौज के ऊपर बनाया जाता था भर जाए। उन्हें यह भी देखना पड़ता था कि वर्षा का पानी नालियों में होकर चल रहा है कि नहीं। वे कहते हैं, अब सब ठीक है। दूसरे दिन जब सुबह वे बाल्टी लेकर पानी लेने जाते तो पाते कि उसमें पानी जमा ही नहीं हुआ। तब उन्हें अचानक ज्ञात होता कि 3 वर्ष पहले जिस चट्टान को काटकर हौज बनाया गया था उसमें कहीं दरार पड़ गई है जिसके कारण पानी नहीं रुक सकता। ये काफी रुचिकर है कि जैतून पहाड़ पर ठीक अंतर्राष्ट्रीय होटल के नीचे एक समाधि है जो कभी ऐसा ही एक हौज था जिसमें पानी नहीं ठहर सका, इसलिए उसे समाधि में बदल दिया गया। इसलिए परमेश्वर ने लोगों के प्रति शिकायत की, तुम मुझसे फिर गए हो। आहाज परमेश्वर से फिर गया और उनकी रीतियों का अनुसरण किया। इन रीतियों का अनुसरण करने और उन भयानक घृणित तरीकों को अपनाने के कारण ही परमेश्वर इन देशों पर न्याय लाया। अब उसके ही लोग इन तरीकों को अपना रहे हैं। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा दी थी कि उसके लोग इस आदत से दूषित न हो जाएं। उनकी अनाज्ञाकारिता ने उसको बीमार कर दिया, जो बाद में विनाश का कारण हुआ। आहाज एक महादुष्ट राजा था। उसकी दुष्टता के कारण ही राज्य की शक्ति का विनाश हुआ। अध्याय 28 पद 5। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया, और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंधुआ बना के दमिश्क को ले गए, और वो इसराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। ये उत्तरी राज्य था और जिसके 120,000 लोग युद्ध के एक दिन ही दिन में मारे गए थे। अध्याय 28 पद 6 और 8। क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था, और इसराइली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 200,000 लोगों से बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट भी छीन कर शमरोन की ओर ले चले। जब वे उन्हें बंधुआ करके इसराइल में लाए, इसराइल के कुछ वृद्ध लोग कहने लगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वे अब भी हमारे भाई हैं, तुम उन यहूदियों को बंधुआ करके नहीं ला सकते। वे उन लोगों को अपना बंधुआ करके रखना चाहते थे, परंतु इसराइल के उत्तरी राज्य से कुछ वृद्ध लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए उन लोगों को बंधुआई से उन्होंने लौटा दिया। अध्याय 28 पद 16। उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि पिलिस्तियों ने उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अनेक शहरों को ले लिया। एदोमियों ने यहूदा में आकर उनको मारा और बंधुओं को ले गए थे। पिलिस्ती पश्चिम से, एदोम दक्षिण से और इसराइली उत्तर से शहरों को ले रहे थे, अर्थात चारों ओर से विनाश हो रहा था। ऐसी स्थिति में वो अशूरों के राजा से सहायता मांगी, परंतु उसकी सहायता करने की अपेक्षा उसने पैसा तो ले लिया परंतु कुछ नहीं किया। अध्याय 28 पद 19 और 20। यों यहोवा ने इसराइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वो निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अशूर का राजा तिग्लत पिलनेसर उनके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। पद 22 और 23। और क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया, और उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाए, क्योंकि उसने ये सोचा था कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु ये उसके और सारे इसराइल के पतन का कारण हुआ। यहां उसकी समस्या अर्थात परमेश्वर का त्याग साफ दिखता है। संकट में उनको परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए था, परंतु वे घृणित हो गए। उन्होंने आरामियों की देवताओं की उपासना आरंभ की और कहा, क्योंकि आरामियों ने हमें मिटाया है, इसलिए उनके ईश्वर हमारे परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली होंगे। उनकी आराधना आरंभ कर दी और उसने और उसकी विधियों ने अर्थात इन झूठे देवताओं की आराधना ने लोगों का विनाश कर दिया। अध्याय 28 पद 27। निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वो इसराइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ना गया, और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।